हेडिंग है कामकाजी महिलाओं का वर्गीकरण, पृष्ठ संख्या 213। यह निर्दिष्ट हो चुका है कि आर्थिक उपार्जन के क्षेत्र में भी महिलाएं अब दिन ब दिन आगे आ रही हैं और ऐसी कामकाजी महिलाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये कामकाजी महिलाएं हमें दोनों स्तरों पर मिलती हैं, ग्राम एवं नगर। अतः कामकाजी महिलाओं का वर्गीकरण करके हम उन्हें निम्नलिखित दो विभागों में विभाजित कर सकते हैं। ए, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं। बी, नगरीय क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं। ए, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं। प्राचीन तथा मध्यकालीन समय में ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं में प्रायः मजदूरी ने तथा सेविकाएं ही होती थी, परंतु नवजागरण तथा स्वाधीनता के उपरांत जो नई समाज व्यवस्था आई, शिक्षा तथा समाज कल्याण के जो नए क्षितिज उद्घाटित हुए, उसमें अन्य अनेक प्रकार की नौकरियां अस्तित्व में आई। अतः ग्रामीण क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र भी अब विस्तृत हो गया है। पहला, शिक्षिकाएं। पूर्व निर्दिष्ट नवजागरण की भूमिका में नारी शिक्षा को सर्वाधिक प्राधान्य दिया गया है। प्रेमचंद के उपरांत भारतेंदु काल के अनेक लेखकों ने नारी शिक्षा की हिमायत की है। शिक्षित होने के उपरांत महिलाओं के लिए सर्वाधिक सुलभ, सुविधाजनक एवं सम्मानित पद शिक्षिका का होता है। भाग्यवती उपन्यास की भाग्यवती हिंदी औपन्यासिक साहित्य की प्रथम शिक्षिका है। आलोच्य उपन्यासों में महिला शिक्षिकाओं से संबद्ध कई चरित्र आते हैं, परंतु यह हमारा उपक्रम केवल ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाने वाली शिक्षिकाओं तक सीमित है। ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी शिक्षिकाओं में शैलेश मटियानी कृत नागवल्लरी की विधवा ठकुराइन गायत्री देवी, शिवानी कृत विवर्त उपन्यास की ललिता, दो सखिया की सखुबाई, तर्पण उपन्यास की पुष्पा, जुलूस की सरस्वती आदि शिक्षिकाओं के चरित्र उपलब्ध होते हैं। शैलेश मटियानी के उपन्यास नागवल्लरी में गायत्री देवी गांव की एक स्कूल में अध्यापिका है। वह जाति की ठाकुर है और विधवा होने के कारण अध्यापिका के व्यवसाय को अपनाती है। बाद में रायछीना कस्बे में भोगांग गांव के कृष्णा मास्टर के प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं विद्वता से आकर्षित होकर वह उनसे विवाह कर लेती है। विवाह के उपरांत वह नौकरी छोड़ देती है। कृष्णा मास्टर डोम शूद्र जाति के हैं और गायत्री देवी कृष्णा मास्टर के प्रभावशाली एवं विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनसे विवाह तो कर लेती है, परंतु उनके परिवेश को हृदय से नहीं अपना पाती, जिसके कारण स्वयं कृष्णा मास्टर को भी लांछित होना पड़ता है। इस संदर्भ में इस उपन्यास का एक पात्र सेवाराम कहता है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, जो औरत हम शिल्पकारों की बिरादरी में शामिल होकर भी हमारे हाथों का छुआ खाने को तैयार नहीं, वह ठकुरानी साहिबा नहीं, ब्राह्मण साहिबा हो, ऐसी हरिजन विरोधी औरत के हाथों का छुआ हम भी नहीं खा सकते। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ नागवल्लरी, पृष्ठ संख्या 182। पैराग्राफ चेंज। सेवानीकृत विवर्त की नायिका ललिता सुशिक्षित, स्वाभिमानी और जुझारू नारी है। आर्थिक दृष्टि से वह आत्मनिर्भर है, क्योंकि गांव के स्कूल में प्रधानाध्यापिका के रूप में पृष्ठ संख्या 214 कार्यभार संभाल रही है। ललिता के पिता को उसके विवाह की चिंता होती है और अंततः वे उसका विवाह लंदन निवासी ग्रीन कार्ड होल्डर सुधीर से कर देते हैं, परंतु इस विवाह से ललिता को धोखा होता है। सुधीर ने अपनी जातिगत परंपरा के निर्वाह हेतु ही विवाह किया था। वस्तुतः लंदन में उसने एक मेम से शादी कर ली थी और ललिता जब वहां पहुंचती है तब सुधीर उसका परिचय अपनी चचेरी बहन के रूप में करवाता है। अतः जॉन फिलोस नामक एक अंग्रेज सज्जन की सहायता से ललिता स्वदेश लौट आती है। उसने अपनी नौकरी से त्यागपत्र नहीं दिया था, अतः वह पुनः अपने कार्य में संलग्न हो जाती है। इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास में यह प्रमाणित होता है कि स्त्री यदि आर्थिक दृष्टिया आत्मनिर्भर होती है तो पुरुष समाज द्वारा किए गए अन्यायों और अत्याचारों का सामना करने में वह समर्थ होती है। शिवानी के ही दूसरे उपन्यास दो सखियां की सखुबाई भी एक शिक्षिका ही है। शिवानी के एक अन्य उपन्यास दर्पण की नायिका पुष्पा पंत भी गांव में एक स्कूल में अध्यापिका है। किशोरावस्था में एक नर पशु ने उसके कौमारे को भंग किया था। उस आघात के कारण उसकी माता की मृत्यु हो जाती है और पिता आत्महत्या कर लेते हैं, परंतु पुष्पा हिम्मत नहीं हारती। वह स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर लेती है, भाई को पढ़ा लिखा कर विदेश भेज देती है और स्वयं एक पहाड़ी नौकरानी खिमली के साथ जीवन व्यतीत करती है। उसका जीवन भी सांसारिक जीवन की एक तरतीब पकड़ लेता है। उसके स्कूल का एक अध्यापक पीताम्बर पांडे उसके जीवन में आता है। वह प्रणय परिणय में परिणत हो जाता है, परंतु अकस्मात ही नर पशु पुष्पा के स्कूल के एक समारोह में मंत्री के रूप में जिलाधीश के साथ आता है। उसे देखते ही पुष्पा के मन में प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और मौका देखकर पुष्पा उसकी हत्या करके अपने माता पिता का तर्पण करती है। पुष्पा पंत को एक आदर्श प्रतिबद्ध अनुशासन प्रिय और छात्र वत्सला अध्यापिका के रूप में चित्रित किया गया है। पैराग्राफ चेंज। रेणुकृत जुलूस उपन्यास में दीपा की माँ सरस्वती रामगंज पिपरा में अध्यापिका थी। तब स्कूल का एक इंस्पेक्टर उसे प्रधान अध्यापिका बनाने का लालच देकर उसे गर्भवती बना देता है। बाद में गांव के ही एक अन्य युवक पारस प्रसाद की सहायता से उसका एक अंग भंग व्यक्ति से विवाह करवा दिया जाता है और कुछ ही समय बाद पारस प्रसाद की सहायता से ही वह विधवा भी हो जाती है। पारस प्रसाद पहलवान जेठ कारे मंडल तथा राम जैसीना आदि कईयों से उसके संबंध रहते हैं। इस उपन्यास में रेणु ने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षिकाओं के लैंगिक शोषण के पक्ष को उद्घाटित किया है। कांग्रेस के एक स्थानीय नेता छोटन बाबू के संबंध में सरस्वती देवी कहती है, इन्वर्टेड कमापन, रामदेव बाबू लोकल बोर्ड के चेयरमैन और शैतान उसका दलाल, कितनी मास्टरनियों को डाक बंगला तक बुलावे में डालकर ले गया, उसका हिसाब उससे किसी दिन भगवान ही पूछेंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ रेणु जुलूस, पृष्ठ संख्या 79। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्कूल की अध्यापिकाओं और ग्राम सेविकाओं को न चाहते हुए भी गांव के कुछ बड़े लोगों से ऐसे संबंध रखने पड़ते हैं। दूसरा, ग्राम सेविकाएं एवं साथिन, पृष्ठ संख्या 215। इस कोठी की कामकाजी महिलाओं का उल्लेख आलोच्य उपन्यास में प्रधान पात्रों में उपलब्ध होती है। ग्रामीण अशिक्षित महिलाओं को समाज कल्याण योजनाओं की जानकारी देने हेतु पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान सरकार ने बहुत कम वेतनमान पर साथिनों की योजना को कार्यान्वित किया था। राजस्थान के भटोरी गांव की बहुचर्चित भावरी बाई एक ऐसी ही साथिन थी, परंतु हिंदी उपन्यासों में अभी इस प्रकार के चरित्रों का प्रवेश नहीं हुआ है। वस्तुतः 10वें दशक में जो कहानी लेखन उभर कर आ रहा है उसमें इस प्रकार के पात्र मिल जाते हैं। भवरी बाई की कथा व्यथा को लेकर भी एक अच्छे उपन्यास की रचना हो सकती है। ग्राम सेविकाओं का उल्लेख भी नागार्जुन, रेणु, शैलेश मटियानी जैसे कुछ उपन्यासकारों में उपलब्ध होती है। शैलेश मटियानी की ग्राम भित्तीय पहाड़ी परिवेश की कहानियों में इनका उल्लेख मिलता है। जुलूस, आधा गांव, काला जल, नागवल्लरी जैसे उपन्यासों में भी यदा कदा इस वर्ग की महिलाओं का उल्लेख हुआ है, परंतु गौड़ पात्र या पारसी भूमिका पात्रों के रूप में ही ये चरित्र आए हैं। भगवती शरण मिश्र एक ऐसे लेखक हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में लंबे अरसे से चल रहे हैं, अतः उनके उपन्यास सूरज के आने तक तथा लक्ष्मण रेखा में इस किस्म के चरित्र मिल जाते हैं। वस्तुतः ग्राम सेविकाओं की समस्या को लेकर कहीं कहीं उनके हो रहे लैंगिक शोषण को लेकर कोई उपन्यास अभी हिंदी में नहीं लिखा गया है। पैराग्राफ चेंज। तीसरा, सरकारी कल्याण योजनाओं में काम करने वाली महिलाएं। परिवार कल्याण योजना, प्रौढ़ शिक्षा योजना, साक्षात्कार अभियान जैसे सरकारी योजनाओं में आजकल अनेक महिलाओं को लिया जा रहा है। आधा गांव, काला जल, जुलूस, इदम नमामा, दीर्घ तपा, नागवल्लरी, सूरज के आने तक आदि उपन्यासों में कहीं कहीं इस वर्ग की महिलाओं के उल्लेख मिल जाते हैं। काला जल के रसूल मुंशी की लड़की ऐसी ही योजनाओं में काम करती है और सरकारी जीप में गांव के दौरे करती है। इसके कारण रसूल मुंशी का रुतबा और लोगों में बढ़ जाता है। पुराना रूढ़िवादी मुस्लिम समाज जहां लड़की की नौकरी को बुरी नज़र से देखता है, वहां उसके वैचारिक काला जल में अब इस प्रकार की प्रवृत्तियों को लेकर नई प्रकार की लहरियां पैदा हो रही हैं और वह ठहरा हुआ कसा चंद भरा काला जल अब प्रवाहित हो रहा है। उसके संकेत लेखक ने दिए हैं। भगवती शरण मिश्र कृत सूरज के आने तक की कथा वस्तु ऐसी सरकारी योजनाओं पर आधारित है। इस उपन्यास में बिहार के बेन सागर और बाजितपुर नामक दो गांवों के परिवेश को लिया गया है। मोहम्मद सत्तार परियोजना पदाधिकारी हैं और राधा उनके अंतर्गत कार्य करती है। दोनों मिलकर गांव के एक सामान्य पुजारी नोनू बाबा से मिलकर उक्त दोनों गांव में सरकार की योजनाओं का प्रकाश फैलाते हैं, प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार करते हैं, ऊंच नीच तथा छुआछूत के विचारों को मिटाने का प्रयास करते हैं। मोहम्मद सत्तार राधा को चाहने लगता है और शायद राधा भी मोहम्मद सत्तार से विवाह कर लेती है। परंतु इसी बीच अकस्मात एक घटना होती है जिसमें गांव का एक युवक लाल मुहर राधा की जान को बचाने के लिए अपने प्राणों पर खेल जाता है। पृष्ठ संख्या 216। इस घटना से राधा के जीवन में परिवर्तन आता है और वह लाल मुहर को चाहने लगती है और अंततः नूनू बाबा तथा सतरूपा बुआ के आशीर्वाद से वे दोनों विवाह सूत्र में बन जाते हैं। नूनू बाबा अपनी सारी संपत्ति 50 बीघे जमीन मंदिर तथा मंदिर का प्रांगण राधा के नाम कर देते हैं। जहां हमारे आजकल के साधु संत अपने मंदिरों मठों और गद्दियों की जमीनों के लिए कचहरी मुकदमे करते हुए पाए जाते हैं, वहां नूनू बाबा जैसे सात्विक संत पुरुष भी हैं जो ऐसा विरल त्याग भी दिखाते हैं। यह एक तथ्य ध्यातव्य है कि प्रस्तुत उपन्यास में राधा एक आदर्श चरित्र के रूप में उभर कर आई है। सरकारी योजनाओं में काम करने हेतु वह शहर से आई है, परंतु ग्रामीण जीवन में इतनी रच बस जाती है कि वही की होकर रह जाती है।